उपस्थित सुधीजनों, देवियों, प्यारे बच्चों, कठोपनिषद की 13वीं श्रृंखला में हम पिछले बार ओम की चर्चा कर रहे थे। आचार्य मृत्यु ने नचिकेता से कहा कि तुम इतने दिनों से जो सवाल पूछ रहे हो उसका संक्षेप में कोई मैं उत्तर दे पाऊं तो उसे ओम कहते हैं। सर्वे वेदायत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति। जिसे वेद गाते हैं, ऋषि मुनि जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसको जानने के लिए तुम इतने दिनों से सवाल पूछते हो, मैं अगर तुम्हें संक्षिप्त में बताऊं वो ओंकार है। उसकी मोटी सी भूमिका हमने पिछली बार आपके सामने रखी थी, इसी ओम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। मांडुक्य उपनिषद कहता है ओमेत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव च सच्चान्यत्रिकालातीतं यत् ओंकार एव। मांडुक्य उपनिषद कहता है ये जो कुछ भी संसार में आप देखते हो, जो इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं, जो कुछ भी दुनिया में है, दृश्य रूप में विजिबल है या अदृश्य रूप में इनविजिबल है, वो सब कुछ उसी ओम की व्याख्या में है। जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ पास्ट हो चुका है, जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है और जो कुछ प्रेजेंट है, अभी वर्तमान है, वो सब कुछ ओंकार है। पर इतना नहीं है, जो कुछ इस काल से अतीत है, जो कुछ इस स्थान से परे है, वो भी ओंकार है। ये कोई बड़प्पन नहीं है, कोई ज्यादा नहीं बोल गया मांडुक्य उपनिषद, इसकी चर्चा अब आज हम करेंगे। इसी तरह गीता कहती है यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विदविशन्ति यत्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षेयोमिति। ये कठोपनिषद की जो मंत्र आपने सुना उसकी छाया, उसका एक झलक गीता में है। इसी को योग दर्शन में पतंजलि जब योग साधना का मार्ग बताते हैं, वो कहते हैं जब तुम्हें योग साधना में समस्याएं हो, तुम्हें सिद्धियां ना मिलती हो, तुम ईश्वर भक्ति करो, तो ईश्वर भक्ति का उपाय क्या है? बोले प्रणव का जप करो। बोले ये प्रणव क्या होता है? बोले तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का जो नाम है उसे प्रणव कहते हैं। ओम का दूसरा नाम प्रणव इसीलिए है क्योंकि प्रकर्षेण नूयते अनेन इति प्रणव। इसका मतलब है जिस शब्द के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिस मीन के द्वारा हम ईश्वर को आसानी से भज सकते हैं, उसी का नाम ओमकार है। इसी को मुंडक उपनिषद बड़े सुंदर ढंग से कहता है कि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं शरवत्तल्लयो भवेत्। बोले अगर तुम्हें गलती से कभी इच्छा हो कि ईश्वर की भक्ति करनी है, गलती से इसीलिए कहता हूं कि अब भक्ति करने मंदिर में कम जाते हैं, अलग बात है, कभी आगे चर्चा करेंगे। अगर गलती से मन में कभी इच्छा पनपे कि मैं सचमुच ईश्वर में भक्ति करूं, तो मानो ईश्वर तुम्हारा गोल है, लक्ष्य है। जैसे लक्ष्य को पाने के लिए जो धनुर्धारी होते हैं, धनु चलाने वाले होते हैं, उनके कुछ असूल है, उनके पास एक धनु होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बाण होना चाहिए और एक प्रत्यंचा जो रस्सी है वो होनी चाहिए। बोले इस भक्ति मार्ग में भी यही धनु की उपमा है। बोले प्रणवो धनु हो, ओमकार को धनु बनाओ, मुंडक उपनिषद है। सरो ही आत्मा, अपने आप को बाण बनाओ। ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, ईश्वर को, ब्रह्म को अपना लक्ष्य बनाओ। अप्रमत्ते नवेधव्यम, बिल्कुल केयरफुल होकर के, सावधान होकर के बाण चलाना। जैसे जो धनुर्धारी जब लक्ष्य पर निशाना लेता है तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ बाण चलाता है। इसी एकाग्रता के साथ जब तुम ओम जप के द्वारा उस ईश्वर को लक्ष्य बनाओगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये आपके सामने मैंने कुछ अलग अलग हमारे शास्त्रों में जो ओम की महिमा है उसकी चर्चा हमने की। पिछले बार हमने ओम की बाहरी स्वरूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, और एक दो चर्चा करने के बाद हम ओम की जो अंदरूनी चर्चा है, जो गहरी चर्चा है, उस पर उतरेंगे। दो चार चीजें और, जैसे हमने पिछले बार चर्चा की थी, जैसे पदार्थ विज्ञान में सबसे जो छोटा अणु है अभी तक खोजा गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी तरह चेतना में जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे हम परम चेतना, परमात्मा, सुप्रीम बींग कहते हैं, इसी तरह भाषा का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसे हम नाद कहते हैं, और ये ओमकार है। ये ओम जिसको हम बोलते हैं अओम, वो उस शून्य नाद का एक बाहरी रूप है। वो ओम का नाद जो हमारे अंदर हमेशा रहता है, जैसे ही आप शांत होते चलेंगे, ध्यान की अवस्था में डूबते चलेंगे, दुनिया की आवाज आपको कम सुनाई देगा, वैसे ही आपके अंदर का आवाज सुनाई देगा। वो आवाज आपको ओम की धुन में सुनाई देगा, पशुओं में, पक्षियों में, बच्चों में, दांत वाले में, बिना दांत वाले में, बूढ़े में, गूंगे में, बहरे में, हर किसी में ये बोलने की क्षमता है। वो मुंह से जो आवाज निकलता है उसको अगर आप कभी डीपली एनालिसिस करेंगे, उसकी अगर एटिमोलॉजी करेंगे, तो आपको उसमें ओम, ओम क्या है, ये एक साउंड है वावल का, स्वर का, जो नासा के साथ, नेजल के साथ बोला जाता है। ओम बोलिए, ओम बोलिए, ओम बोलिए। बच्चा जब पैदा होकर के रोता है उसमें भी वही नेजल साउंड आपको मिलेगा। वो कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, वो गूंगा बोले, गूंगा जिसको कुछ नहीं बोलना आता वो भी ओम आ करेगा। ये ओम का जो स्वाभाविक ध्वनि है, जो एक नेचुरल साउंड है, उसको बोलने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, किसी शरीर अपने मुंह के किसी अंक को टकराने की जरूरत नहीं, जो बाकी भाषाओं को बोलते समय हम यूज करते हैं, इसीलिए इसके अनाहत नाद कहते हैं। ऐसा साउंड, ऐसा धुन, ऐसा ध्वनि जो बिना किसी चोट के, बिना किसी दो अंगों के टकराव से अपने आप निकलता है, ऐसी चर्चा हमने पिछली बार की थी। आज मैंने सिर्फ इसका रिवाइज किया, दो तीन और चीजें। ये ओम सबसे सूक्ष्मतम नाद है, पर सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता है। कितनी बड़ी बात, उसकी चर्चा हम करेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ये जो ओमकार है, जैसे आपको पता है कि हर भाषा में हर शब्द का एक लिंग होता है, एक जेंडर होता है, एक नंबर होता है, यो मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, उसको वो सिंगुलर है, प्लूरल है, संस्कृत में तो ड्यूअल नंबर भी होते हैं, द्विवचन भी होते हैं, तो कोई लिंग है, वचन है, और जो केसेस भी लगते हैं, विभक्तियां लगाते हैं, पर ये ओम एक ऐसा है जिसमें कोई जेंडर नहीं है, ये न्यूट्रल जेंडर है, इसमें कोई वचन नहीं है, ये सिंगुलर नंबर है। ईश्वर क्या है? ईश्वर पुरुष है कि स्त्री है? ईश्वर अगर पुरुष है तो ये ना इंसाफी है, फिर स्त्रियों का वो नहीं है, अगर वो स्त्री है पुरुष की नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए ईश्वर का जो नाम है ब्रह्म, वो न्यूट्रल संस्कृत में, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है, ना वो पुरुष है ना स्त्री है। इसलिए उस ईश्वर का जो नाम है ओमकार, वो भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। ईश्वर एक है, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी का ईश्वर कुछ अलग है, वो ये यूरोप और अमेरिका, आधा अरब और अफ्रीका को कंट्रोल करता है, मुसलमानों का ईश्वर वो अरब वाले एरिया और अफ्रीका के कुछ एरिया इधर उधर ये शासन करता है, वो कोई ऐसा नहीं कि धरती को बांट रखा है, और हिंदुओं का ईश्वर भारत के इधर वाले एरिया को शासन करता है। ईश्वर एक है, लोग उसको किसी भी तरीके से जाने, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, जैसे हम पिछले बार भी चर्चा की थी, मैं व्यक्ति एक हूं, कोई मुझे चोर कह के बुलाता है, कोई मुझे दोस्त कहकर बुलाता है, कोई पापा कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई आचार्य कहता है, वो आपकी मर्जी है लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। मैं एक सिंगल एंटिटी हूं, मैं एक तत्व हूं। ये ओंकार ईश्वर का जो कुछ स्वरूप है, इस ओंकार का वही भाषा में स्वरूप है। हम सब ओंकार का जप करते हैं क्योंकि हमें कहा जाता है जप करिए। ओम के जपने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और करोड़ों लोग ओम को जपते हैं और किसी को ईश्वर आज तक मिलता नहीं है। ये कंट्राडिक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो हम जपते हैं, हम ओम जपे या कोई मंत्र जगे या कोई दीक्षा जपे या किसी भी भाषा में जपे, जप उस दिल में नहीं उतरता, जब हृदय में नहीं उतरता, जब दिल के गहराई में नहीं जाता, वो सिर्फ तोतों की रटंत हो जाता है। जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी, तोते सिर्फ शब्दों को रटते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, उसको हृदयंगम नहीं करते, उसको दिल में नहीं उतारते हैं। तो अच्छा से अच्छा मंत्र भी, अच्छा से अच्छा शब्द भी जब हम जपते हैं, बिना फीलिंग के साथ, बिना किसी भावना के साथ, बिना किसी व्याकुलता तड़प के साथ, वो शब्द बिल्कुल रटे हुए शब्दों की तरह हो जाता है, जो मीनिंगलेस हो जाता है, जो अर्थहीन हो जाता है। हम करोड़ों करोड़ों लोग कितने नामों से ईश्वर को जपते हैं, पर वो दिल में वो रस नहीं मिलता, वो आनंद का फुहार, वो फाउंटेन नहीं झलक पड़ता जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, क्योंकि मुंह पर बोलने से दिल पर नहीं उतरता। मैं दिन में 1,00,001 बार रसगुल्ला जपूं तो मुझे कभी भी रसगुल्ले का स्वाद पता नहीं चलेगा, जब तक मैं एक बार एक छोटी सी टुकड़ा रसगुल्ला खा ना लूं। मैं दिन में 1,00,001 बार माला लेकर के सत्य 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 करता रहूं, वो कुछ फायदा नहीं होगा जब तक मैं एक बार सच बोलूं नहीं। हमारी समस्या है, हम ईश्वरों को सो कॉल्ड जो भक्त हैं, धार्मिक हैं, जो जपते हैं, वो गले से ऊपर तक रहता है, वो दिल में नहीं होता है। कभी कभी आप देखेंगे बड़े मजेदार लोग, वो आजकल तो वो एक कपड़े का भी बना देते हैं, उसके अंदर माला होता है, करते रहते हैं, अपने अपने मंत्र, अपने अपना नाम जपते रहते हैं, मुंह में गंदी गंदी गालियां निकल रही है, इधर चल रहा है वो हरे कृष्ण गायत्री मंत्र बोलो बोलो बोलो, अभी इधर गाली, मैं गाली तो स्टेज पर बैठ के बोल नहीं सकता, वो क्या बोलते हैं नीचे सुना दूंगा आपको, तो वो गाली चल रहा है, इधर मंत्र भी चल रहा है, सामने देख करके गुस्सा आ रहा है, बीवी पर उधर चिढ़ रहे हैं, खाना ऐसे बना, इधर वो चल रहा है, मंत्र चल रहा है, अंदर गले के नीचे कुछ भी नहीं है, जीरो, सिर्फ किसी ने बोला, किसी सत्संग में सुना, किसी किताब में पढ़ लिया तो मंत्र चल रहा है, कि मैं 1 साल में 1 करोड़ इतने बार मंत्र जपूंगा, निरर्थक है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, सिर्फ जीभ का एक्सरसाइज हो सके तो हो जाए, अंदर कुछ नहीं उतरता। मैंने और आपने ऐसे हजारों लाखों धार्मिकों को देखा होगा जपते हुए, जिनके चरित्र में कोई सुधार नहीं दिखता, जिनके आत्मा में कोई संस्कार नहीं दिखता, जिनके व्यक्तित्व में कोई भक्ति नहीं दिखती है, सिर्फ जपते रहते हैं। ओम भी एक तरह का घिसा पिटा शब्द हो गया, क्योंकि वो दिल से नहीं निकलता, इसलिए कभी उसका जो तेज है, जो उसकी महिमा है, जो शास्त्र में हम सुनते हैं, जो जो लोगों ज्ञानियों से हम जानते हैं, वो हमें एहसास में नहीं आता, क्योंकि हमने कभी इसको सीरियसली गंभीरता से दिल से पुकारा ही नहीं है। इसीलिए कभी हमें वो एहसास नहीं होता। आप मुंह में बोले न बोले, एक बार ओम के ध्यान में डूब जाइए, आपके मुंह से निकलता नहीं निकलता पता नहीं, पर अगर आप डूब गए तो सचमुच आप उस रस में डुबकी लगाएंगे। इसी को हम स्नातक कहते हैं। स्नातक का अर्थ होता है डूबा हुआ, नहाया हुआ। ये ओम की कुछ बाहरी चर्चाएं थी। अब हम शब्द पर आते हैं। ये ओम में तीन अक्षर है, दूसरी स्लाइड आ गया। ओम में तीन अक्षर है, आ उ और म। इन तीन अक्षरों का मिलावट है ओम। और वर्णमाला का वर्णमाला समझते हैं, हिंदी या संस्कृत में या किसी भी भाषा में जो सिलेबल है, जो लेटर्स है, उसका जो पहला अक्षर है संस्कृत में वो आकार होता है, और उ स्वर वर्णों में जो बीच का वर्ण है उसको उ कहते हैं, और सारे वर्णमाला में जो अंतिम अक्षर है वो मकार है। तीन अक्षर है जो आप जानते हो, आ उ म। तीनों के मिलने के बाद जो बनता है वो भी एक अक्षर ही बनता है, वो भी एक सिलेबल, एक लेटर ही बनता है, जिसको ओम कहते हैं। तीन अक्षर दिखता है, आ उ म, वर्णमाला में लेटर की चार्ट में आपको आ मिलेगा, ओ मिलेगा, म मिलेगा, ओम का नाम कोई अक्षर होता नहीं है। तो तीन सिलेबल जो दिखने वाले, एक नहीं दिखता, सिर्फ वो आपके अंदरूनी एहसास होता है, ये तीन जमा एक चार है। जो चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं थोड़ी गंभीर चर्चा होगी, आप सो नहीं जाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो वो तो तीन अक्षर जो दिखने वाला अक्षर, एक अक्षर जो नहीं दिखता, जो आपके वर्णमाला में आपके जो बच्चों को आप सिखाते हैं या आपने सीखा उसमें ओम नाम का लेटर सिखा ही नहीं, पर ओम एक लेटर है इसीलिए कि क्योंकि एक साउंड है, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक लेटर है, पर ये लेटर एक साउंड है। ये साउंड, हर साउंड लेटर नहीं होता, जिस साउंड का मीनिंग होगा वही लेटर होता है, इसका एक मीनिंग है, ये एक साउंड है, इसीलिए एक लेटर या सिलेबल या अक्षर है, पर यह अक्षर माला में इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इससे आप कोई शब्द नहीं बना सकते। यह अपने आप में एक यूनिक लेटर भी है, वर्ड भी है, इसे दूसरे वर्ड बन ही नहीं सकते। ये जो ओमकार के तीन अक्षर है, वो तीन अक्षर हमारे जिंदगी के तीन स्टेट्स को, तीन स्टेटस को, तीन अवस्थाओं को बताने वाले हैं, और वो जो इनविजिबल एक अक्षर है वो हमारे जीवन के एक चौथी दशा, जो हमारे लिए इनविजिबल है, उसको वो डिस्क्राइब करने जा रहा है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ये पूरा संसार 3+1 का है, वो चर्चा आगे चलती रहेगी। सबसे पहले हम आते हैं अगला स्लाइड में आकार पर। ओमकार में जो अकार है, ओमकार का जो पहला अक्षर है अ, ये अ ईश्वर के किस चीज को इंडिकेट करता है आप जरा देखिए। वर्णमाला में पहला अक्षर अ है, देखिए सबसे पहले अ से शुरू होता है। अ मतलब आदि, शुरुआत, पहला, स्टार्टिंग, इनिशिएशन। ईश्वर इस संसार का पहला अस्तित्व, फर्स्ट एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। जब कुछ भी नहीं था तो वही था, सृष्टि उसी से होती है, प्रलय होता तो उसी में समा जाता है। जैसे अ से पूरी वर्णमाला शुरू होती है, ईश्वर से पूरी सृष्टि शुरू होती है। अ ईश्वर के उस चीज को इंडिकेट करता है कि जैसे अ वर्णमाला का पहला अक्षर है, इसी तरह ईश्वर इस संसार का पहला तत्व है। अ की एक दूसरी खासियत है, आप देखेंगे जितने भी वर्ण है लेटर से हिंदी में या संस्कृत में, उनको आप बिना अ के हेल्प से प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते हो। जो आप क ख ग घ बोलते हो, जब भी आप क बोलते हो क प्लस अ मिला हुआ होता है, खाली क को आप बोल ही नहीं सकते हो कोई भी लेटर संस्कृत में या हिंदी में विदाउट अ, बिना अ के आप प्रोनाउंस आप उच्चारण कर ही नहीं सकते हो। जो भी आप करते हो उसमें अ मिला होता है, बाद में मिले तो बनता है क, पहले मिले तो बनता है अक। अगर पहले भी नहीं बाद में नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी मशीन, कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी उस वर्ण को बोल ही नहीं सकता। ईश्वर ने ऐसी हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग दिया ही नहीं कि वो व्यंजनों के आधा व्यंजनों को बोला जा सके। जब आप बोलते अक, अक में जो क आधा है वो अ के साथ मिलने से बोलते हो, जब आप क बोलते हो तो क जमा अ मिला के बोलते हो, खाली क को नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब वर्णमाला में जितने अक्षर हैं सबके अंदर अ समाया हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है कि संसार में जो कुछ भी एंटिटी है, अस्तित्व है, सत्ता है, सबके अंदर वो ईश्वर समा हुआ है। वो अ ईश्वर की उस सर्वव्यापकता को, ऑल परवेडिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जैसे आ खुद वर्णमाला में सब जगह है, इसी तरह ईश्वर सब जगह है। अब आते हैं ऊपर, ये भी इनिशियल व्याख्या कर रहे हैं, गहरी व्याख्या के लिए फिर अंदर जाएंगे। अब आते हैं ऊपर, वर्णमाला में जितने भी वर्ण है, लेटर्स है, सिलेबल है, उसमें 5 सिलेबल सिर्फ इतने हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, जिनका अपना ओरिजिनल अस्तित्व है, बाकी सब मिलावट है। कोई भी अक्षर बोलिए वो मिलावट है। ये 5 जैसे ए आ प्लस ई ए, ओ आ प्लस उ ओ, क क प्लस अ क, की क प्लस ई की, सिर्फ 5 ही लेटर हैं जो ओरिजिनल है, फंडामेंटल है, बेसिक है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी के साथ मिले नहीं है। ये जो 5 स्वर हैं, जो 5 इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उनके बीच में ऊकार है, ऊ बैलन अ ई ऊ री री। ये जो आ है, बड़ी है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आ कैसे बना? अ प्लस अ आ। बड़ी कैसे बना? ई प्लस ई ई। मतलब सब मिले जुले हैं। ये जो 5 संपूर्ण स्वतंत्र सत्ताएं हैं, इन 5 के बीच में ऊकार ये इंडिकेट करता है कि सृष्टि के आरंभ और अंत बीच में जो होता है वो संतुलन बनाता है, वो दोनों के अंदर बैलेंस बनाता है। ईश्वर उसे इस बात को इंडिकेट करता है ईश्वर के लिए कि जैसे ऊकार वर्णमाला में बीच में है, इसी तरह ईश्वर सृष्टि के शुरू में और सृष्टि के अंत के बाद जो बीच का है, जो हमारी सत्ता, हम क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच के हैं। दुनिया में जो कुछ आप देखने लायक है, जो कुछ विजिबल है, जो कुछ नोएबल है, जानने लायक है, वो क्या है, वो बीच की हिस्सा है, सृष्टि और प्रलय के बीच के। उस सबको जो इंडिकेट करता है वो ऊकार है। आगे आते हैं मकार पर, तीसरे स्लाइड में। जितने भी वर्णमालाएं हैं उसका अंतिम अक्षर मकार है। जो हिंदी या संस्कृत जानते हैं वो शिकायत करेंगे, मां के बाद भी अक्षर है, य र ल ब श स स, ये मिलावट अक्षर हैं। य बना ई प्लस अ, ल बना ली प्लस अ, वगैरह वगैरह। जो श स स है वो विसर्ग का विकार है। जो व्यंजन वर्ण है 25 है, 25 कंसोनेंट्स है, उसका जो अंतिम कंसोनेंट है उसको मकार कहते हैं। जैसे मकार वर्णमाला का अंतिम वर्ण है, वो इंडिकेट करता है जब दुनिया में कुछ भी नहीं होता, जो लास्ट एंटिटी है वो भी ईश्वर है। मकार इंडिकेट करता है कि ये संसार जब प्रलय में होता है, सृष्टि जब नहीं होती है तब भी वही होता है। अकार इंडिकेट करता है ईश्वर की प्रथम आदि को, उकार इंडिकेट करता है उसके मध्य को, मकार इंडिकेट करता है उसके अंत को। ये संसार की तीन ही दशाएं हैं, तीन ही स्टेट्स है कि वो पैदा होता है, वो बनी रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। ये तीनों को आ उ म इंडिकेट करते हैं। जो चौथी दशा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम थोड़ी और गहराई में आते हैं। हमारे इंसान के जीवन की चर्चा करेंगे। हमारे तीन तरह की स्टेट्स है। एक तो हम जगी हुई स्थिति में होते हैं। जगी हुई स्थिति मतलब जब हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, जब हम अवेकनिंग हालत में होते हैं, जब वेकिंग स्टेट में होते हैं, जब हमारी जागृत अवस्था होती है। एक अवस्था होती है जब हम सोते हैं पर नींद पूरी नहीं होती है, आधी नींद, अभी अभी कच्ची कच्ची नींद है, सोने जा रहे हैं, नींद आने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देखते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं ड्रीम स्टेट। एक स्थिति होती है जब हम पूरी तरह गहरी नींद में होते हैं और ड्रम भी बजाए तो भी नींद नहीं खोलता, पानी भी डाले नींद नहीं खोलता, उसको हम कहते हैं सुषुप्ति। तीन दशाएं हमें दिखती है। जैसे मेरे जीवन में तीन दशाएं हैं, इस ब्रह्मांड के भी तीन दशाएं हैं। वेदांत दर्शन में एक वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर तुम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, उसके नेचर को समझना चाहते हो, तो एक व्यक्ति के स्ट्रक्चर को, उसके नेचर को समझ लो, उसकी बनावट को समझ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा यूनिवर्स कैसा है। अगर तुम्हें किसी व्यक्ति को समझना है, तुम्हें यूनिवर्स का स्ट्रक्चर पता है, तो तुम व्यक्ति को समझ जाओगे। जैसा पिंड में है, जैसा किसी सिंगुलर एंटिटी में है, वैसा ही ब्रह्मांड में है, वैसे ये कलेक्टिव एंटिटी में है। तो दोनों में से किसी को समझ जाओ, दोनों समझ में आ जाएगा। हम आकार की चर्चा करेंगे। जो चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ये मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या है। मांडुक्य उपनिषद ओमकार के हर अक्षर की व्याख्या करता है, कहता है जो आकार है, जैसे वर्णमाला में आकार पहला अक्षर है, इसी तरह हमारे जीवन में जो पहली दशा है, जो पहली स्टेट है, वो है जागृत अवस्था। बच्चा जैसे ही मां के पेट से बाहर निकलता है तो वो जगा हुआ, सोए हुए नहीं निकलता, निकलते ही क्वां क्वां करने लगता है, वो जो उसकी जागृत अवस्था है। हमारी पूरी, हमारा पूरा जीवन जागृत अवस्था में होता है, स्वप्न में हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे मेरे जीवन में मैं जगी हुई स्थिति में होता हूं, तो इसी तरह ये जो संसार है, ये जो संसार का जो कुछ आप देख रहे हो, ये उसकी जगी हुई जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट है। कंपेयर कैसे करेंगे? जब आप जगे हुए होते हो, कभी खाते हो, कभी पीते हो, कभी उठते हो, कभी बैठते हो, कभी सोते हो, कभी गुस्सा करते हो, कभी प्यार करते हो, कभी वैराग्य में जाते हो, कभी काम में जाते हो, हजारों तरह के मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एक्टिविटी चलता रहता है। एक ठंडा पड़ता है, एक आ जाता है, एक डूबा हुआ होता है। दुनिया की जब वो जो वेकिंग स्टेट है, जो जागृत अवस्था भी ऐसी है, कहीं कोई नष्ट हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई स्टार है, कोई तारा है जो ब्लैक होल में जा रहा है, नए गैलेक्सी आ रहा है, कोई आज से हजारों साल पहले जो पहाड़ था आज वहां रेगिस्तान बन चुका है, जहां समुद्र था वहां रेगिस्तान है, जहां रेगिस्तान था वहां समुद्र है, बदलता जा रहा है, नए नए आईलैंड निकलते जा रहे हैं। आज जो आप पृथ्वी की नक्शा देखते हो, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स देखते हो, कहते हैं आज से कितने हजार साल पहले इस तरह का नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, इस तरह के कॉन्टिनेंट नहीं थे, तब यूरोप और एशिया एक था। तो बदलते जाते हैं, दुनिया बदलती है हर पल, एक पेड़ मरता है, कितने पेड़ पैदा होते हैं, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई इसका मतलब ये हैपनिंग स्टेट है, कुछ हो रहा है, होता रहता है। जैसे दुनिया में कुछ होता रहता है, मेरे अंदर भी कुछ होता रहता है। जो मेरे अंदर होता है ये पिंड की दशा है, जो दुनिया में होता रहता है वो ब्रह्मांड की दशा है। ये जो दुनिया की दशा है, मेरे अंदर की दशा है, ये उसकी जागृत अवस्था है। मेरी जागृत अवस्था को मैं कहता हूं जागृत, वेकिंग स्टेट। इस संसार की जागृत अवस्था को कहा जाता है विराट। वो शब्द देखिए, विराट लिखा होगा। विराट एक टर्मिनोलॉजी है जिसका अर्थ होता है विविधतया राजन्ते इति विराट, मतलब अलग अलग वैरायटी में जब वो सब कुछ मैनिफेस्टेशन होता रहता है उसी को विराट कहते हैं। ईश्वर का एक नाम विराट है क्योंकि वो अलग अलग रूपों में रहने वाले वस्तुओं में दिखता है, अंदर होता है। जब ध्रुव पौराणिक कहानियों के अनुसार जंगल में जाता है, उसकी सौतेली मां उसको भेज देती है, तो जंगल में उसको वो शेर काटने खाने आते हैं, सांप काटने आते हैं, उसको डरने लगता है। वो जो शेर दहाड़ रहा होता है उसको उसके अंदर अपना भगवान दिखता है, वो सांपों में भगवान दिखता है, वो पेड़ों में दिखता है। हमें नहीं दिखता, हम उस अवस्था तक पहुंचे नहीं है। प्रहलाद को खंभे में भगवान दिखता है, उसके बाप को नहीं दिखता है। हम तो बोलते हैं जर्रे जर्रे में ईश्वर है, पर हमें कभी दिखता नहीं। जो भक्ति करते हैं उनको दिखता है वो ईश्वर, उस हर तत्व में है। इसीलिए विराट, विराट मतलब अलग अलग तरीके से जो मैनिफेस्ट होता है, प्रकट में आता है, जिसका प्रकटन होता है, उसका दूसरा नाम है वैश्वानर। नीचे लिखा है वैश्वानर। वैश्वानर जो अग्नि आप जलाते हैं फायर, उसको भी वेद में वैश्वानर कहते। वैश्वानर का अर्थ होता है विश्व समझते हैं, विश्व मतलब यूनिवर्स, नर कहते हैं बिंग, यूनिवर्सियल बिंग, मतलब ऐसा तत्व जो यूनिवर्स के संसार के हर चीज में होता है वैश्वानर है। अग्नि को वैश्वानर क्यों कहा? अग्नि क्या है? इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक ऊर्जा का एक रूप है। वो आपकी गाड़ी जिस एनर्जी से चलती है, आपकी फैक्ट्रियां जिस एनर्जी से चलती है, आपकी खाना जिस एनर्जी से पकती है, आपका जीव जिस शरीर जिस एनर्जी से चलता है, जिस अग्नि से आप हवन करते हैं, महाकाश में जो तारे सूरज हैं वो जिस एनर्जी से चलते हैं, आपके बल्ब जिस एनर्जी से चलते हैं, वो सब एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा का दूसरा नाम अग्नि है। ये अग्नि के अलग अलग रूप हैं। उस ऊर्जा सबके अंदर है, मैटर हो या लिविंग बींग हो, सबके अंदर वो ऊर्जा है, वो करंट है, वो दिखता नहीं है। इसीलिए ऊर्जा को वैश्वानर कहा गया वेदों में, एनर्जी को, अग्नि को वैश्वानर कहा। परमात्मा भी वैश्वानर है क्योंकि संसार के हर तत्व के अंदर वो समाया हुआ है। जिसको हम खाते हैं उसके अंदर भी, जो खाता है उसके अंदर भी, जिसको हम देखते हैं उसके अंदर भी, जो देखता है उसके अंदर भी, हर चीज में वो समाया हुआ है। इसीलिए वो वैश्वानर है क्योंकि ये जो स्टेट है, ये जो अवस्था है, ये पहली अवस्था है। आकार उस पहली अवस्था को इंडिकेट करता है। संसार की ये पहली अवस्था विराट या वैश्वानर, मेरी ये पहली अवस्था जागृत, ये दोनों अवस्थाओं को इंडिकेट करने वाला आकार है। अगले अक्षर पर चलते हैं, ओकार। ओम का जो बीच का अक्षर है वो है ऊ। ऊ जैसे हमें पता चला कि ऊ जो है वो सेंटर में होता है, मिडिल स्पेस होता है, पांचों के बीच में। ईश्वर की वो जो भूमिका है, जो सेंट्रल भूमिका है, जो सृष्टि और प्रलय के बीच की जो भूमिका है, उस भूमिका उसे इंडिकेट होता है। पहले हमारे खुद से शुरू करते हैं, मेरी जो दूसरी स्थिति है वो स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था मतलब ड्रीम स्टेट, मतलब जब मैं जगा हुआ नहीं हूं पर मैं सोया हुआ भी नहीं हूं। जगा हुआ मतलब मेरे सेंसेस, मेरे इंद्रियां अब फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पर मेरा माइंड अभी भी फंक्शन कर रहा है, मेरा मन अभी भी एक्टिव है। इसीलिए मैं निढाल होकर पड़ा हूं, उठने को मन नहीं करता, मेरे हाथ पैर आंख कान काम नहीं करते, पर मेरा मन अभी भी एक्टिव है। तो होता क्या है, अगर मेरा मन और सेंस इंद्रियां दोनों एक्टिव हो तो मैं दुनिया की काम करूंगा, जब इंद्रियां एक्टिव नहीं करते मन एक्टिव करे तो मैं सपना देखूंगा। रियल लाइफ में भी बहुत सारे सपना हम किसको कहते हैं, जो हम फिजिकली करते नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनने की ख्वाब रखता हूं, तो ख्वाब कब तक रहेगा, जब तक आप बन नहीं जाए, आप कोशिश ना करें। तो जब आप फिजिकली कोशिश करते हैं तो ख्वाब ख्वाब नहीं रहता, रियल होता है। तो जब आप एक्टिव नहीं होते हैं फिजिकली, सिर्फ मेंटली एक्टिव होते हैं, उसी को ख्वाब कहते हैं। इसीलिए जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने के लिए करना पड़ता है। दुनिया में हर आदमी चाहता है मैं धनी बनूं, ज्ञानी बनूं, बड़ा आदमी बनूं, पर सारे नहीं बनते हैं, क्योंकि जो उसको इंद्रियों से फिजिकली मेहनत नहीं करता वो कहां से बनेगा। तो हम ख्वाब देख के रह जाते हैं। इसलिए हिंदी में बड़ा सुंदर कहावत है, मुंगेरी लाल के सपने, सिर्फ ख्वाब देखना। ख्वाब यही है, ख्वाब मतलब सपने। हमारी वो दशा जिस स्थिति में हमारा बॉडी, ये ग्रॉस बॉडी, ये जो बाहरी शरीर, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, हम बेड पर लेटे हुए हैं पर अभी भी हम पूरी तरह सोए नहीं है, क्योंकि मेंटली हम एक्टिव है, हमारा माइंड अभी भी काम कर रहा है, उस स्थिति को हम स्वप्नावस्था कहते हैं। ये स्वप्नावस्था का क्या है, पूरी गहरी नींद और जगी हुई अवस्था के बीच की स्थिति है। ना हम सोए हुए हैं ना हम जगे हुए हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बातें आ गया आपसे। इसी तरह इस दुनिया की भी एक स्वप्नावस्था है, इस यूनिवर्स की भी एक स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था क्या है दुनिया की, जब दुनिया अपने मैनिफेस्ट के रूप, मैनिफेस्टेशन के रूप में नहीं है, जब वो प्रकट रूप में नहीं है, ना वो समा प्रलय की स्थिति में, विनाश की स्थिति में है, वो है पर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उस स्थिति को हम स्वप्नावस्था कहते हैं। अंडे के अंदर बच्चा, आपका आपके बच्चे आपको पूछेंगे पापा या मम्मा ये क्या है, आप कहोगे ये अंडा है, बोले ये अंडे में क्या होता है, बोले इसके अंदर वो बच्चा है, वो एक अंडा लाएगा तोड़ देगा, बोले उसमें कुछ नहीं, वो पीले पीले और सफेद सफेद पानी है, बोले इसमें तो कहां बच्चा तो है नहीं। पर अगर आपने आपने उसको तोड़ा नहीं, दो चार पांच दिन के बाद उसमें से कुकु कुकु करके एक चूजा निकल जाएगा। अंडा में, अंडा क्या है, सृष्टि की पहली अवस्था, मृत्यु की बाद की अवस्था, पर अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, वो स्वप्नावस्था है, वो ना ना सोने की अवस्था, ना जगने की अवस्था, ना वो मृत्यु की अवस्था, ना वो जागृत की अवस्था, वो दोनों की बीच की अवस्था है। बीज में पेड़, आपके बच्चे आपको पूछेंगे ये क्या है, ये बीज है, ये पेड़ कहां से निकला, वो बीज से निकला, वो पेड़ बीज को फाड़ेगा, बोले कहां इसमें तो पेड़ है ही नहीं। आप जानते हो क्योंकि आप समझदार हो कि इसी बीज में वो पेड़ है, पेड़ की सत्ता है, पर वो विजिबल नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन के रूप में नहीं है, वो छुपा हुआ है, अदृश्य है, अव्यक्त है, वो मृत्यु से परे आ चुका है, सृष्टि से पहले की स्थिति है। इसको समझने के लिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आप एक घर बनाते हैं, ये जो घर आपका बन के तैयार हो जाता है, सबसे पहले घर कहां बना? आपके मन में बना कि मुझे घर बनाना है। ये जिस डिजाइन का घर है, ये मान लीजिए आपने ऐसा डिजाइन किया या आपके आर्किटेक्ट ने बनाया। अगर आर्किटेक्ट ने बनाया तो आर्किटेक्ट ने पहले कहां घर बनाया? अपने दिमाग में नक्शा खींचा, उसको कागज में उतारा। दिमाग में जो बिल्डिंग बनाया वो बिल्डिंग नहीं है, जो कागज में जो नक्शा बनाया वो भी बिल्डिंग नहीं है। जो बिल्डिंग बना यही बिल्डिंग है, पर ये बिल्डिंग नहीं बन सकता अगर बनाने वाला दिमाग में वो चित्र नहीं आता। वो चित्र क्या है, वो दिमाग में जो नक्शा वो क्या है? वो अंडा है, वो बीज है, वो सपनावस्था है। आप ये नहीं कह सकते हो कि घर नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि